गुनागार वो, यानी कौन से हैं ये गुनागार जो नेकियां कर सकते थे, जो अपने आप को सही कर सकते थे, चल सकते थे सीधे रास्ते पर, नहीं चले, नहीं चले बस, दुनिया में गुम हो गए। उनको अपनी मर्जियां करनी थी, उनके सामने उनको पता था नेकी क्या है, बुराई क्या है, बच सकते थे, नहीं बचे, गुनाहों को छोड़ सकते थे, इम्पॉसिबल नहीं था, बस दिल नहीं करता, नहीं छोड़ा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, फरमाया कल मोहल, ये मोहल की तरह होगा, यानी अब क्या जकूम कैसा होगा। जकूम ऐसे सिर्फ बोलने से कि जकूम का दरख्त है, ये एक अजाब है उनके लिए, यानी खाना भी एक अजाब है, ये कैसा अजाब होगा। नहीं है कि सिर्फ ऐसे नहीं कि कांटेदार दरख्त कांटे खा रहे हैं जी, बहुत गर्म है जी, बहुत बदबूदार है, ऐसा नहीं। कल मोहल, मोहल की जब तफसीर की गई है तो मुख्तलिफ तफासीर आती हैं। बाज जगह आता है पिघला हुआ तांबा, कॉपर, मोल्टन कॉपर। बाज जगह आता है कि जख्मों से जो निकलने वाला खून है और पीप है, वो है मोहर। बाज जगह आता है तेल की तिलछट, यानी जो इंतहाई गर्म होती है, और जो पिघली हुई चीजें थे, जो जो तेल की तिलछट है ना, तेल के नीचे नीचे जो एक थिक सी चीज जम जाती है, उसको भी कहते हैं। यानी उसका बताया गया कि मोहल क्या चीज है, इससे तुम इमेजिन कर लो। मतलब ये नहीं कि दुनिया के अंदर हम कोई जो अपने बर्तन में देखे तो नीचे एक तह जमी हुई, अच्छा ये होगी मोहल, नहीं, जाहिर ही बात है हम जब वहां की बात करते हैं तो वहां के टेम्परेचर की इंतहा हम समझ ही नहीं सकते। पानी यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवेपोरेट हो जाता, स्टीम बन जाता, वहां पे क्या कैसा पानी होगा और कैसा खाना होगा कि जो ना इतनी हाई हीट के ऊपर भी ना तो इवेपोरेट हो रहा है, वो किस चीज से बना होगा ना। ये ऐसा दरख्त है कि जो कि जिसको आग लग जाए कि ये खत्म हो जाए, जैसे दुनिया के दरख्त हैं आग के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो ये दुनिया से कोई भी मुमासलत नहीं है, ये ऐसा होगा कि इस कदर गर्म है कि जो तेल की तिलछट, यानी नीचे नीचे जो गदला सा पिघला वसी चीज नीचे रह जाती, जब कोई चीज पिघलाई जाती है तो नीचे बर्तन के साथ लग जाती, इंतहाई वो गर्म होती है, वो कल मोहल है। और ये कैसी खुराक होगी जो ऐसे, यानी खोलेगी इतना इसके यगली फिल बुतून, ऐसे जोश मारेगी कि पेट में जाके भी जोश मारेगी, पेट में भी जाके भी खोलेगी। आप गरम अगर चाय वगैरह कभी पी लेते हैं तो वो मुंह में तो एकदम गरम लगती है, गले तक जाएगी, फिर उसके बाद आपको इतना महसूस नहीं होता। ये कैसा खाना है जो पेट के अंदर जाके भी बॉयल हो रहा है, तो ये हलक से कैसे जाएगा। और वो इसको खाएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने नहीं खाना, इसलिए कि भूख के मारे उनकी हालत बुरी हो रही है, कि भूख का अजाब एक अलग अजाब है। अब वो सोचेंगे कि हम इससे ही अपनी भूख मिटा लें, अल्लाह ताला हम सबको भूख के अजाब से महफूज रखे। और दुनिया में भी जिन लोगों को आप देखते हैं कि खाना नहीं मिलता, बहुत अरसे तक मेल न्यूट्रिशन होते हैं, जब उसके सामने खाना रखा जाए तो वो कैसे खाएगा। अब सोचे कभी आपको शदीद भूख लगी हो, फिर आप ये नहीं देखते कि चम्मच पकड़ना या क्या, जैसे तैसे हाथ से उठा उठा के मुंह में बस डालते रहते, बस नहीं चलता कि जल्दी से पेट में डाल दें, भूख इतनी होती है। फिर आप ये नहीं देखते ठंडा है कि गर्म है, फिर आप ये नहीं देखते कि बासी है या फ्रेश है, फिर खाते जाते हैं, कल का बचा हुआ खाना भी खा लेते, किस लिए कि भूख मिटानी है। लेकिन वहां पे भूख नहीं मिटेगी, इतना खाएंगे इतना खाएंगे, खाते चले जाएंगे, मगर भूख फिर भी स्टिल वही होगी, जबकि खाना इट्सेल्फ एक अजाब होगा। खाना इट्सेल्फ वो एक जैसे दुनिया में मजे के लिए आप खाते हैं ना, या चलो भूख मिटाने के लिए खाए, ना भूख मिटेगी ना मजा होगा उसके अंदर, उल्टा वो भी अजाब होगा। और जो मकसद होता है खाने का कि पेट भर जाए, पेट भी नहीं भरेगा और भूख वैसे ही लगी रहेगी। और यहां पे ये हमें पता चलता है कि ये खाना इतना गर्म तो जरूर ही होगा जितनी गर्म जहन्नुम की आग होगी। जाहिर है जहन्नुम के अंदर है ये खाना, ये खाने समझ लें आग के अंगारे होंगे जिन्हें जहन्नुमी अपनी भूख मिटाने के लिए निकलेगा, और ये एक बदतरीन शक्ल होगी अजाब की। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। हम तो इतने लग्जरीज के आदि हैं, हमारे फ्रिज में 2 दिन खाना पड़ा रहे तो हम फेंक देते हैं, पुराना हो गया। खाना लजीज ना बनाओ, लजीज ना बनाओ यानी आम खाना है तो हमारा दिल नहीं चाहता खाने को, नहीं मजेदार नहीं है। एक डिश हो तो हम कहते हैं दूसरी क्यों नहीं है, दाल बकी है तो गोश्त क्यों नहीं है, रोटी बकी है तो साथ चावल क्यों नहीं है, आज मीठा क्यों नहीं बनाया। हम तो एक डिश पे इक्तफा नहीं करते, हम तो चख चख के खाना फिर खाते हैं, मजेदार होगा तो खाऊंगी, मजेदार नहीं तो छोड़ दिया कुछ और खा लिया। इनका खाना देखें, इनको दिन रात यही खाना है और उस खाने से पेट नहीं भर रहा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद कागल हमीम, मानिंद जोश खाने के खोलते पानी के, जैसे पानी खोलता है ना इस तरह ये जोश मारेगा उनके पेट में, क्या जकूम, जकूम ऐसे उबलेगा। अब पेट में जाके भी उसकी सोचें कि टेम्परेचर उसका कम नहीं हुआ, पेट में जाके भी उसकी जलन है, थोड़ी सी दुनिया में हार्ट बर्न हो जाए ना तो इंसान इतना बेचैन होता है कि सो नहीं पाता। और कहां ये कि पेट में ही वो उबल रहा है। ये है असीम का खाना जो अपनी ख्वाहिशात के बुतों को पूजता रहा, वो ख्वाहिशात नहीं तो इसको इस तरफ आने नहीं दिया ना, ख्वाहिशात इतनी हैं कि वो हर ख्वाहिश के पीछे दम निकले। वो बच सकता था गुनाहों से, बस नहीं बचा क्योंकि मेरा दिल, मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश ये ज्यादा उसको प्यारी थी, या गफलतें ऐसी थी कि गफलत से ही नहीं निकला। आप देखें यहां पे क्या खा रहा है, इंतहाई बदजायका, इंतहाई गर्म, इंतहाई बदबूदार। बदबूदार कोई जगह भी हो ना, कोई चीज भी हो तो हम उसकी से दूर भागते हैं। खाना तो दूर की बात है, हम उसके करीब भी नहीं जाना चाहते। ये अंजाम है इस शख्स का। फरमाया खुदू, पकड़ो इसको, अल्लाह ताला हुक्म देंगे इसको पकड़ो। फातिलूहू, उतुल का जो माना है ना किसी को कहर और हकारत के साथ उसके कपड़ों से पकड़कर घसीटना, ये माना है इसका, यानी गुस्से के साथ और हकारत के साथ उसको चारों तरफ से पकड़ के जबरदस्ती खींचना, ये है उतुल। अस्तग़फिरुल्लाह। कि जब इनको भूख की शिद्दत हलकान कर देगी, खाना मांगेंगे, उस वक्त उनको हां के जहन्नुम में एक जगह ले जाया जाएगा जहां पे जकूम दिया जाएगा, फिर हांका जाएगा उनको, यानी जिल्लत भी है, रुसवाई भी है, घसीटते हुए जहन्नुम की तह में ले जाया जाएगा। जब अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म होगा उस वक्त 70,000 फरिश्ते, अल्लाह की फौजें जो है ना वो कम नहीं है, 70,000 फरिश्ते आगे बढ़ेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको ऊंधा करके मुंह के बल घसीट के ले जाएंगे जहन्नुम के बीच में। वहां पे क्या होगा, सुम्मा सुब्बू, फिर उंडेल दो फौकर आसी उसके सर के ऊपर, निनाजाबिल जाहिम, खोलते पानी का अजाब, इसके सर के ऊपर खोलता हुआ पानी डालो। अल्लाह ताला ये जहन्नुम के दारोगों से फरमाएगा। ये पानी कैसा होगा, इससे उसकी खाल और पेट के अंदर की तमाम चीजें जल जाएंगी। फरिश्ते लोहे के हथौड़े मारेंगे जिससे उसका दिमाग फट जाएगा, सर फट जाएगा, फिर ऊपर से ये हमीम डाला जाएगा। ये हमीम जहां जहां पहुंचेगा, यानी अब सर में से गुजरा, जिस्म के अंदर आया, गले से पेट के अंदर गया, जहां जहां से गुजरेगा हड्डियों को खाल से जुदा कर देगा, यहां तक कि उसकी आंते काटता हुआ पिंडलियों तक पहुंच जाएगा, यानी नीचे तक चला जाएगा। अल्लाह कभी जानो के खाने ना खिलाना। इसीलिए हमारे असलाफ इतना ज्यादा जब ये इन चीजों को सुनते थे, पढ़ते थे, तो इस कदर खौफ खाते थे ना। अता सुलेमानी के बारे में आता है कि हमसाय ने रोटियां लगाने के लिए तंदूर जब जलाया ना, तो देख के बेहोश हो गए, उसकी आग को ऐसी होगी जहन्नुम की। अगर पता है जब जहन्नुम यानी क्यामत के दिन लोग खड़े होंगे ना, तो सबसे ज्यादा जिस चीज से उनको वास्ता पड़ेगा वो प्यास होगी, इतनी शदीद प्यास होगी। और उसके ऊपर उनको प्यास बुझाने के लिए क्या दिया जा रहा है, हमीम, हमीम दिया जा रहा प्यास बुझाने के लिए। वो पता है जो जन्नती होंगे उनको हौजे कौसर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिलाएंगे, और इनके लिए पूरा हशर का दिन भी शदीद प्यास में गुजरेगा। इसी हालत में जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे, और जहन्नुम के अंदर जाके क्या पानी मिल रहा है, हमीम। यानी ये जैसे मैंने आपको बताया, ये वो चीजें हैं जिनकी अगर हमें एक सीन इनका, रियलिटी का जो सीन है वो दिखा दिया जाए, तो हम मर जाए, हम नहीं देख सकेंगे ये सीन। इसके अंदर मुब्तला होने वाले का क्या हाल होगा जब ये सीन देखने पे भी इंसान को मौत आ जाए। तो जब खाना खाएंगे उसके बाद जाहिर है पानी मांगेंगे, पानी मांगेंगे तो इस किस्म का पानी दिया जाएगा। ये जब खोलता हुआ पानी जब उनके सर पे डाला जाएगा, तो ये सर के अंदर छेद कर देगा, जिस्म के अंदर के तमाम आज़ा को जला देगा। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। और आज़ा जो होंगे वो पीठ के रास्ते निकलकर कदमों में आ गिरेंगे। सबसे पहले ये खोलता पानी किसको जलाएगा, दिमाग को। क्यों सर पे क्यों डालो, बॉडी पे डाल दो, दिल पे डाल दो, कितनी मां सर पे क्यों डालो, सोचा आपने? क्योंकि ये दिमाग को जलाए, जिस दिमाग के अंदर, जिस सर में ये ख्वाहिशात थी ना, ये गलत अकायद थे, जिस दिमाग के अंदर साजिशें थी, अय्यारियां थी, इसमें मंसूबे बनते थे ना जुल्म और सितम करने के, इसमें साजिशें तैयार होती थी ना, ये वो सारा है जो झुकता नहीं था अल्लाह के आगे, जो हक के आगे नहीं झुकता था, जो अकड़ता था, जिसमें तकब्बुर था, अपनी बड़ाई थी, इस सर के ऊपर डालो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। और फिर सर पे जब कोई चीज डाली जाती है तो उसका असर सारे जिस्म पर पड़ता है। इसीलिए इंसान कोई भी
خطرناک چیز سامنے سے آ رہی ہو تو سر کو پیچھے کرتا ہے کہ میرے سر پہ نہ لگ جائے، سر کو بچاتا ہے. سر پہ لگی ہوئی چوٹ، سر پہ لگی ہوئی کوئی بھی چیز، تکلیف سارے جسم میں جاتی ہے. یہ وہ گرم پانی ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پیالہ جب منہ کے قریب کرے گا، چہرے کے قریب کرے گا، چہرے اس کی جو سٹیم ہوگی نا، اتنی زیادہ ٹیمپریچر ہوگا اس کا، اتنی گرم ہوگی کہ چہرے کی سکن ساری پگھل کے اس پیالے کے اندر گر جائے گی. اس قدر وہ گرم ہے. اتنا کھولتا ہوا پانی بھی پیئیں گے پیاسے اونٹ کی طرح پیئیں گے، جس کو پی کے پیاس نہیں بجھے گی پھر بھی پیتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں دنیا میں بتا رہا ہے تاکہ تم باز آ جاؤ، چھوڑ دو نافرمانیاں. پھر نہ کہنا پتا نہیں تھا، پھر نہ کہنا کسی نے نہیں بتایا تھا، پھر نہ کہنا ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ باتیں کھول کھول کے بیان فرماتا ہے. اور یہاں پہ یہ جو کہا گیا کاغل الحمیم، وہ پانی کی طرح کھولے گا. آپ نے دیکھا تیل جب ابلتا ہے کتنا بھی ابل جائے وہ ایسے نہیں کھولتا جیسے پانی کھولتا ہے. جیسے پانی کے اندر ایک ابال آتا ہے، ببل آتے ہیں اور ابال آتا ہے جیسے پانی اوپر کو اٹھتا ہے، اس طرح تیل نہیں ہوتا. اب وہ کس قسم کا تیل ہوگا، کس قسم کا بگلا ہوا کاپر ہوگا، کیا ہوگا، یہ ہم نہیں جان سکتے دنیا میں. جب تیل پانی کی طرح ابلنے لگے تو پھر اس کی سوچ لیں، اس کی شدت کا اندازہ سوچیں گے کیا ہوگا. جب ہم کوئی چیز ڈیپ فرائی کرنے لگے تو ضرور سوچیں کہ اس قسم کا، دنیا کا تو یہی کہہ سکتے نا، اس قسم کا اگر کھانا کسی کو مل جائے، اس کو پینا پڑ جائے تو کیا ہو. جیسے ہم ہاتھ بچاتے ہیں کہ کہیں ایک قطرہ بھی ہاتھ پہ نہ گر جائے، اس کو پینا، حلق سے اتارنا اور اندر ڈالنا اور پیتے چلا جانا. ذوق چکھ اس کو اب، یعنی اس عذاب کا مزہ چکھ، اب یہ ذائقہ چکھ یہاں کے کھانوں کا. انکا انت العزیز الکریم، تو بڑا غالب اور عزت والا تھا. یعنی یہ ایک طنز ہے اس کے اوپر کہ دنیا میں تم بڑی طاقت، اقتدار، غلبے کے مالک رہے ہوگے نا، دنیا کی نگاہوں میں تو بڑی عزت، بڑا ٹھاٹ باٹ، بڑی طاقت کا نشہ تھا جو اترتا نہیں تھا، اور اپنے آپ کو بہت عزت والا کہتے تھے کہ میں بڑی عزت والا ہوں. بیگم صاحب، صاحب جی سلوٹ پڑتے ہیں، لوگ آگے پیچھے بھاگتے ہیں، میڈم، سیٹ صاحب، پرنس آف لا، پرنس آف لا یہ کہا جاتا تھا. بڑے عزت والے تھے، بڑے زبردست تھے. عزیز یہاں پہ بھی سمجھے نا، عزت سے بھی اور غلبے کا معنی بھی ہے، کریم کا معنی بھی ہے. عزیز سے بھی بڑھ کے درجہ ہے کہ یعنی بہت عزت، معزز ہونا، بڑے ریسپیکٹفل تھے، بڑا آنر دیا جاتا تھا جہاں جاتے تھے. اس کا مطلب ہے لوگوں کے اندر تو اس کو بڑی عزت پذیر آئی تھی. دنیاوی لحاظ سے یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، دنیاوی لحاظ سے تو اچھا بھلا تھا، وہ فقیر نہیں تھا. لیکن یہی دو چیزیں ہیں نا جو انسان کو حق کی طرف نہیں آنے دیتی کہ میں بڑا پاورفل ہوں، میرے پاس بڑی پاور ہے، میرے تو آگے پیچھے لوگ پیتے ہیں، میری اتنی عزت ہے. تو اسی غرور کے اندر انسان مارا جاتا ہے پھر. اور انسان سوچتا ہے پتہ نہیں میں دین کی طرف آ گیا تو لوگ مجھے پوچھیں گے نہیں، میری کوئی عزت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو بڑا عزت والا بنتا تھا نا، یہ اب چکھ. اور میرے پاس پاور ہے، پتہ نہیں اگر میں اس دین کو اپنا لوں تو پتہ نہیں میری پاور نہ چلی جائے. وہی لوگ جو دنیا کے اندر بہت بڑے سمجھے جاتے تھے، بڑے عزت والے ہوتے تھے، جن کے لیے لوگ دروازے کھولتے تھے، ان کے آگے پیچھے لوگ بھاگتے تھے، جو مجلسوں کی جان تھے، جن کے ساتھ تعلقات رکھنے میں لوگ اپنی بڑھائیاں سمجھتے تھے، جی فلاں آ گئے، فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، یہ دیکھو آج اس فلاں کا حال کیا ہو رہا ہے، دنیا میں عیش کرنے والے دیکھو آج کہاں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں دولتوں والے، غلبے والے، پاور اتھارٹی والے، آج ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، چکھا بھی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم.